हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेल, आज तक देव को सिद्धार्थ खुराना के अलावा किसी और से कभी भी डर नहीं लगा था, लेकिन आज तो उसे पहली बार सामने खड़ी हुई झलक से अंदर ही अंदर डर सा महसूस हो रहा था। और अगले ही पल वो झलक की ओर देखकर चिढ़ते हुए बोला, देखे झलक मैडम, मुझ पर भड़ास निकालने से कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी तुम जैसे दो कौड़ी की लड़कियां हमारे बॉस के आगे पीछे इसी तरह से घूमती रहती हैं। अब सिद्धार्थ खुराना ने तुम्हें दो ऑप्शन दिए हैं, या तो एक डब्बे में गर्भ निरोधक गोलियां हैं और दूसरे डब्बे में जहर की गोलियां हैं। अब डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। झलक का दिल तो कर रहा था कि अभी और इसी वक्त वो आगे बढ़े और सामने खड़ा हुआ जो इंसान उसे इस तरह की फालतू बकवास कर रहा है वो जाकर उसका भी और इसी वक्त तुरंत गला दबा दे और उसकी जान ले। झलक अब रौनित की बात सुनकर उसे आगे और गालियां देना चाहती थी कि तभी अचानक से वहां की लिफ्ट के दरवाजे खुलता है। अब झलक ने सोचा कि जरूर सिद्धार्थ खुराना वहां आया होगा, और इस बात का सोचते ही झलक ने सोचा उसके चमचे को गालियां देने से क्या फायदा, सीधे सीधे सिद्धार्थ खुराना को ही वो गाली देगी। लेकिन लिफ्ट में से सिद्धार्थ खुराना की जगह एक बुजुर्ग महिला को आता हुआ देखकर झलक की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। भले ही वो महिला बुजुर्ग थी, उसे महिला के दाएं बाएं दो दो औरतें और थीं, जिनमें से एक औरत ने उस बुजुर्ग महिला का पर्स पकड़ रखा था और एक ने उसका फोन थाम रखा था, जिससे इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगाया जा सकता था कि उसे औरत बुजुर्ग औरत के साथ आने वाली दो औरतें थीं जिन्होंने काफ़ी मॉडर्न कपड़े पहने थे। वो उस बुजुर्ग महिला के नौकरानियाँ थीं, जिसका मतलब साफ था कि ये बुजुर्ग महिला कोई ना कोई बड़ी हस्ती थी। अब जैसे ही वो वहाँ आई, तब रौनित ने उस बुजुर्ग महिला की ओर देखकर पहले तो रौनित चौंक गया और अगले ही पल उसने उन्हें अभिवादन किया और गुड मॉर्निंग विश करते हुए बोला, मैडम मैडम, उर्वशी जी आप यहाँ। तब उर्वशी जी ने अंदर जाकर देव की तरफ देखा और उसकी ओर घूरते हुए सर्द अंदाज में बोलती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब देव ने अपना सर झुकाकर बोला, मैडम मैं बॉस के कुछ पर्सनल काम का ध्यान रख रहा हूँ। देव ने ईमानदारी से जवाब दिया। तभी उर्वशी जी ने टेबल पर रखी हुई गर्भ निरोधक गोलियों के डब्बे की ओर इशारा किया और उसे फटकारते हुए बोलती हैं, क्या आपका ये पर्सनल काम है, मेरे परपोते से छुटकारा पाने के बारे में है। अब जैसे ही उर्वशी जी ने वहां आकर ये कहा, अब तो झलक की आंखें हैरानी से काफी ज्यादा चौड़ी हो गई थीं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। पर पोता अब उर्वशी की निगाहों को अपने ऊपर महसूस करते हुए उसने गोलियों के डब्बे की ओर देखा और वो हैरान हुए बिना न रह सकी, क्योंकि उर्वशी ने जिस पर पोते के बारे में जिक्र किया था वो कहीं और नहीं बल्कि वो झलक के अंदर था। इसका मतलब साफ था, सिद्धार्थ खुराना ने नशे की हालत में झलक के साथ जो रिलेशन बनाया था उसकी वजह से झलक प्रेग्नेंट हो सकती थी। इसीलिए उसने अगली सुबह ही देव को दवाई देने के लिए या फिर उसकी जान लेने के लिए बोल दिया था। तब उर्वशी जी झलक की ओर मुड़ी और उसका डार्क चेहरा एकदम मुस्कान में बदल गया। उसने पूछा, तुम झलक शर्मा हो ना। झलक को सिद्धार्थ खुराना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब उर्वशी के ये पूछने पर और इतने विनम्र शब्दों में पूछने पर झलक ने उर्वशी जी की ओर देखा और बोली, जी हाँ मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। झलक अपने सामने खड़ी हुई औरत को देखकर समझ चुकी थी कि ये आम औरत तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से सिद्धार्थ खुराना का चमचा जो कि उसके सामने उल्टी सीधी जुबान चला रहा था, अब उर्वशी जी के आते ही वो किस तरह से भीगा बिल्ला बन गया था, ये बात झलक से छुपी नहीं रही थी। और फिर जब उर्वशी जी ने मुस्कुराकर झलक से बात की तो बदले में झलक ने भी बड़े ही प्यार से उनसे पूछा था, जी मैडम बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अब झलक के इतने प्यार से उसे मैडम बोलने पर उर्वशी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो झलक की ओर बड़े ही ध्यान से देखने लगी। एकदम सांवली सांवली सी झलक जिसने अपनी खूबसूरती को, अपनी गोरी रंगत, साथ साथ अपने चेहरे के चमक को उस विदेशी क्रीम के पीछे छुपाया हुआ था। उसके बाद भी उर्वशी जी को झलक बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लगी थी। झलक का नाक नक्शा, उसका खूबसूरत फिगर उर्वशी जी बड़े ही ध्यान से देख रही थीं। भले ही झलक एकदम बदसूरत सी थी, लेकिन उसका नाक नक्शा उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। तब उर्वशी ने बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, देखो बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और मैं बस तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक परपोता चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी जानकारी इकट्ठे करवाई और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता अस्पताल में है और तुम अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करती हो। तुम एक अच्छी बच्ची हो, इसीलिए अगर तुम खुराना परिवार के लिए एक बच्चा पैदा करने में मेरी मदद करने को तैयार हो, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने पर तैयार रहूंगी। इतना ही नहीं, जो कुछ तुम कहोगी मैं वही करूंगी। अब तो झलक की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थीं। उसने अपना हाथ उर्वशी के हाथों से दूर खींच लिया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। अभी थोड़ी देर पहले उस औरत को देखकर झलक के मन में उसके लिए मान सम्मान पैदा हुआ था, लेकिन अब उसे औरत के इस तरह की बातें सुनकर झलक की तो हैरानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि एक ही दिन में उसकी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी कि लोग उसे इस नज़र से देखने लगेंगे। झलक सोच रही थी, उनके पोते ने मेरे साथ इतनी बुरी और घटिया हरकत की है, इसके लिए इन्हें अपने पोते को डांटना चाहिए, उसे फटकारना चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। लेकिन ये क्या, यहाँ तो ये औरत जाकर सीधे सीधे उसे कह रही थी कि वो खुराना परिवार के लिए एक बच्चा पैदा करके दे। क्या वो बच्चा पैदा करने की मशीन है? कहीं ना कहीं झलक का पारा एकदम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। झलक को इस तरह की बात कभी भी बर्दाश्त नहीं होती थी और वो सीधे तरीके से भी उर्वशी की जी की बेइज्जती नहीं कर सकती थी। हालांकि मन में वो उर्वशी जी को बहुत ज्यादा कोस रही थी कि जैसा इनका घटिया पोता, वैसे घटिया ये है। तभी झलक अपने चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट लाकर बोलती है, नहीं नहीं मैडम, मैं जानती हूँ कि आप खुराना परिवार के लिए पर पोता चाहती हैं, लेकिन ये आपका पर्सनल मामला है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पर ये किस तरह का मजाक था? सिर्फ इसलिए कि उस सिद्धार्थ खुराना ने नशे की हालत में मेरे साथ रिलेशन बनाए, जबरदस्ती मेरे साथ रिश्ता कायम किया, तो क्या उसके लिए मुझे खुराना परिवार के लिए बच्चों को जन्म देना पड़ेगा? आखिरकार आप किसी लड़की के इस तरह का घटिया मजाक कैसे कर सकती हैं? वैसे भी मेरे साथ गलत हुआ है, आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कहीं ना कहीं झलक खुद को रोक नहीं पाती और अपने उसके मन की कड़वाहट बाहर आ गई थी और उसने उर्वशी जी को मौका देकर एक दो बातें सुना दी थी। अब उर्वशी जी झलक की बातें बड़े ही ध्यान से और एकदम प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सुन रही थी। वही देव को अब झलक पर गुस्सा आ रहा था कि ये इस तरह से कैसे हमारी उर्वशी मैडम से बात कर सकती है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मैडम से इस तरह से बात कर सके। वाकई ये लड़की काफी ज्यादा बदतमीज है। अगर अब तक उर्वशी मैडम यहाँ नहीं आई होती तो अब तक तो देव कब का उसका काम तमाम कर चुका होता। अगर वो गर्भ निरोधक गोलियां नहीं खाती तो वो जहर की गोलियां खुद उसे अपने हाथों से देता। वैसे उसने देव के साथ बदतमीजी की थी, देव को बीच में गालियां दी थीं, इसीलिए देव को झलक से अलग के तरह की चिढ़ पैदा हो गई थी। वहीं दूसरी ओर
शहर के मशहूर रेस्टोरेंट में आकांक्षा आधे घंटे से किसी का इंतजार कर रही थी और बार बार बेचैनी से अपनी घड़ी को देख रही थी। उसके लिए एक एक मिनट इंतजार करना काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था।